नमस्कार प्रिय श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रिय श्रोताओं, हमें जानकर बेहद खुशी हो रही है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से पहला इतिहास नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए इससे पूर्व कि हम आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु ने निकाली मेरे मन गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और विशेष करके उन मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल की पुस्तक में से पहले इतिहास की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, और आज हमारा अध्ययन पहले इतिहास की पुस्तक से अंतिम अध्ययन होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर के दास दाऊद ने मंदिर बनाने के लिए सभी सामग्रियों का इंतजाम किया। इतना ही नहीं, उसने मंदिर की देखभाल करने के लिए याजक और लेवियों को उसके कार्यभार भी सौंपे। इतना ही नहीं, उसने इस बात का भी प्रकटीकरण किया कि परमेश्वर की महिमा के लिए इस भवन को वह सम्मान की रीति से बनाना और देखना चाहता था। आज परमेश्वर न तो किसी भवन में रहता है और न ही भेंट करने के लिए उतरता है। जी हाँ, वह पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य में अंतर्वास करता है। आज हम अपने अध्ययन में उसके आगे के विषय को देखेंगे, और इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आशीष मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेम, दया और करुणा के लिए, जिससे आप हम मनुष्यों पर प्रकट करते हैं। यद्यपि कि हम लोग दुर्बल और कमजोर लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं। हमारे कार्यों के मुताबिक आप हमसे व्यवहार नहीं करते, परंतु अपनी बड़ी दया के द्वारा आप हमें जीवन दान देते हैं। पिताजी, आज की इस घड़ी में जब हम आपके श्रोता भाई बहन आपके जीवित वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते और सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवित वचन हम में से प्रत्येक के हृदय में कार्य करने पाए। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो निराश हैं, जो दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशानी हालत में हैं, किसी न किसी रूप से तनाव में हैं, पिताजी आप प्रत्येक की सहायता करें, उनकी सहायता प्रदान करें, ताकि हर एक जीवन आपको अपने निकटता से देखने और समझने पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि आप उनके रचयिता हैं, आप उन्हें छुटकारा देना चाहते हैं। और आज इस घड़ी में आप हमें अपने जीवित वचन के द्वारा सिखाना चाहते हैं। हाँ प्रभु, इस समय हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को, हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस अध्ययन पर हम आपकी आशीष चाहते हैं, आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि आज मैंने आपसे कहा कि आज पहला इतिहास की पुस्तक से अंतिम अध्ययन होगा, तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहले इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसका 14 और 15 पद। पहले इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसका 14 और 15 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुने। अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तौल कर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तौल कर और सोने की दीवटों के लिए और उनके दीपकों के लिए प्रति एक एक दीवट और उसके दीपकों का सोना तौल कर और चांदी के दीवटों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपक की चांदी प्रति एक एक दीवट के काम के अनुसार तौल कर। मेरे प्रियो, यहां विचार यह है कि मंदिर निर्माण में किसी प्रकार की कटौती न की जाए, मंदिर के निर्माण में कंजूसी न किया जाए। यह दाऊद के राज्य के कोष का खर्च था। मित्रों, स्मरण रखें कि यह परमेश्वर के सम्मान में किया गया दाऊद का काम था। तो आइए हम आगे पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसके 19 पद में लिखा हुआ है, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। मेरे प्रियो, यह एक अद्भुत पद है। मंदिर का नक्शा परमेश्वर ने दिया था, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू का नक्शा दिया था। परमेश्वर ने नक्शा दिया, परमेश्वर ने निर्माण स्थल का चुनाव किया, ओरनान का खलिहान, परमेश्वर ने दाऊद को प्रेरित किया, उसे उत्साहित किया, उत्साह दिलाया, परंतु उसे निर्माण करने का काम नहीं दिया। कहने का अर्थ है कि उसने दाऊद के हाथों से अपने लिए मंदिर नहीं बनवाए। हम पहला इतिहास के पुस्तक 28 अध्याय उसके 20 पद में आगे पढ़ते हैं, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हिया बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। मेरे मित्रों, क्या ही अद्भुत वचन है। दाऊद मंदिर के लिए उत्साहित एवं जोश से भरा था और सुलेमान को उत्तेजित करने के लिए यथा संभव प्रयास भी कर रहा था। वह चाहता था कि सुलेमान विलंब न करे, परंतु स्थिरता से परमेश्वर के कार्य को करते रहे। हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसके 21 पद में लिखा हुआ है, और देख परमेश्वर के भवन के सब काम के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए हैं और सब प्रकार की सेवा के लिए सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे और हाकिम और सारी प्रजा के लोग भी जो कुछ तू कहेगा वही करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, दाऊद के राज्य में सब थे याजक, राजमिस्त्री, राजकुमार और लेवी, सबको इस कार्य के निमित्त उत्साहित किया गया था। सुलेमान का काम बस इतना सा था कि दाऊद के आदेशानुसार करे और दाऊद ने जो योजना उसे समझाई थी उसे पूरा पूरा करे। प्रिय मित्रों, दाऊद इसराइल की प्रजा को अपना अंतिम संदेश दे रहा है। अध्याय 29 में उसका ध्यान राज्य की ओर है, परंतु उसकी अंतिम सांस तक दाऊद के मन में यही है कि मंदिर राज्य का केंद्र बना रहे। मेरे प्रियो, यह दाऊद का अंतिम संदेश है। आपको स्मरण होगा कि याकूब ने अपने मरण शैया पर अपने पुत्रों को बुलाकर उनसे बातें की थी। मूसा ने भी अपने अंतिम समय में इसराइल के 12 गोत्रों को संदेश दिया था। अब दाऊद भी अपने अंतिम समय में अपनी प्रजा को वियोग संदेश सुनाता है। तो आइए अब हम देखेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसका एक पद। पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसका एक पद लिखा है, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मेरे प्रियो, सुकुमार से दाऊद का अभिप्राय था कि सुलेमान जनाना था, अनुभवहीन था, वह इस बात से अपरिचित था। यद्यपि दाऊद दीन एवं उदार मनुष्य था, वह अत्यधिक कठोर भी था, अंततः वह एक चिर अनुभवी व्यक्ति था, परंतु सुलेमान अनुभवहीन था, वह इन सारी बातों को नहीं जानता था। तब हम आगे देखते हैं पहला इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, मैंने तो अपने शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी के वस्तुओं के लिए लकड़ी और सुलेमानी पत्थर और जोड़ने योग्य मणि और पच्ची के काम के लिए रंग रंग के नग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। मेरे मित्रों, दाऊद कहता है कि मैंने यथाशक्ति परमेश्वर के भवन निर्माण हेतु संपूर्ण तैयारी की है। ओह, दाऊद का मन हम में हो कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहले रखें। ये सब सामग्री उसकी अपनी संपत्ति थी, वह अपने लिए रख सकता था, लेकिन उसने सब कुछ परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया। आज हम में से कितने लोग संपत्ति रखते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए मुट्ठी भर भी देना पसंद नहीं करते हैं। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको दाऊद राजा के जीवन से सीखने की आवश्यकता है ताकि हम भी परमेश्वर के कार्य के लिए अपने हाथ को बढ़ा सके, उसकी सेवकाई के लिए हम भी अपने हाथ को खोल सके ताकि उस सेवा के द्वारा आत्माएं बचाई जा सके। हम पहले इतिहास के पुस्तक 29 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी के वस्तुओं के लिए चांदी और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ और कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पण कर देता है। मित्रों, ध्यान दीजिए, दाऊद ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि उसके देने में कमी या कंजूसी नहीं थी, अतः उसने प्रजा को भी चुनौती दी कि कौन अपने आप को समर्पित या अर्पण कर दे सकता है। आज आपके लिए भी ऐसा अवसर है कि आप अपनी कलीसिया के लिए अपने आप को, अपने संपत्ति को अर्पण करें ताकि परमेश्वर की कलीसिया बढ़ोतरी करने पाए। हम पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं, तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इसराइल के गोत्रों के हाकिमों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से, ध्यान दीजिए प्रजा की प्रतिक्रिया अब क्या है। आगे हम देखते हैं पहला इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5,000 किकार और 10,000 दरकनोन सोना, 10,000 किकार चांदी, 18,000 किकार पीतल और 1,00,000 किकार लोहा दे दिया, और जिनके पास मणि थे उन्होंने उन्हें यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शोनी यहीएल के हाथ में दे दिया। मेरे प्रियो, प्रजा ने उदारता एवं आनंद से परमेश्वर के भवन के लिए दान दिए। हम आगे पढ़ते हैं पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय के 9 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए और क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन से और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। जी हाँ, दाऊद अत्यधिक प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रजा स्वेच्छा से मंदिर की समृद्धि में दान दे रही थी। मेरे मित्रों, मैंने एक नारा लिखा हुआ देखा है, दुख होने तक दान दो। यह नारा संसार के लिए अच्छा है, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य ऐसा नहीं है। यदि दान देने से आपको दुख होता है तो मत दें। परमेश्वर चाहता है कि दान देने से आपका मन और जीवन आनंदित हो, आप आनंद पाएं। पौलुस कहता है कि सहर्ष दान दो। इसराइल की प्रजा भी ऐसा ही कर रही थी, और वह समय बड़े आनंद का समय था। क्या आज आप दान देने से आनंदित होते हैं, या आप कुड़कुड़ाते हैं, या आप दुखित होते हैं? मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको आनंद से देने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके राज्य की बढ़ोतरी हो, सुसमाचार लोगों तक पहुंचने पाए। पहला इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसके 10 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इसराइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। जी हाँ, देखिए दाऊद परमेश्वर को इसराइल का पिता कहता है, जबकि पुराने नियम में परमेश्वर को मनुष्यों का पिता नहीं कहा गया है। दाऊद भी परमेश्वर को पिता नहीं कहता है। परमेश्वर ने दाऊद को अपना सेवक कहा था। यह एक अत्यधिक रोचक बात है। मेरे प्रियो, मूसा की व्यवस्था मनुष्य को परमेश्वर की संतान नहीं बनाती थी, केवल मसीह यीशु में विश्वास हमें परमेश्वर के पुत्र या पुत्री बनाता है। आइए अब हम आगे देखेंगे दाऊद की प्रार्थना। यह दाऊद की एक महान राजसी प्रार्थना है। पहला इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। मेरे प्रियो, क्या ये शब्द आपको परिचित से नहीं लगते? शिष्यों ने जब यीशु से कहा कि उन्हें प्रार्थना करना सिखाए, तब प्रभु यीशु ने उन्हें एक आदर्श प्रार्थना सिखाई थी। वह उन्हें दाऊद की इस प्रार्थना की ओर लाया था, तेरा राज्य आए। दाऊद के मन की इच्छा थी कि ये शब्द संक्षिप्त हैं और सुगम हैं, परंतु वे सदियों की आशा और प्रेरणा से पूर्ण है। यह धर्मशास्त्र और विशेष करके पुराने नियम की सर्वोत्तम प्रार्थना है। मेरे प्रियो, यह व्यापक महिमाशाली अगाध प्रेम से पूर्ण स्तुति और धन्यवाद की प्रार्थना है। इसमें मानवीय श्रेय का निवारण करते हुए परमेश्वर पर मनुष्य की निर्भरता की घोषणा है। इससे दीनता अंगीकार और समर्पण प्रकट होते हैं। इसमें स्वीकार किया गया है कि सर्वस्व परमेश्वर का है। दाऊद स्वीकार करता है कि राज्य परमेश्वर का है। प्रभु यीशु ने इस प्रार्थना को चुना कि अपने शिष्यों को शिक्षा दे। धर्मशास्त्र आधारित राज्य की धारणा यह है कि राज्य अल्पकालिक भी है और अनंत भी है। यह वैश्विक राज्य है और स्थानीय राज्य भी है। यह राज्य वर्तमान है और अप्रत्यक्ष भी है। सामान्य भाषा में कहें तो यह राज्य पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को रचा और उसे प्रभुता सौंपी। राज्य से उसका अभिप्राय क्या था? पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य या पृथ्वी के पुनरुद्वार की प्रार्थना है, पुनः परमेश्वर के राज्य के अधीन हो जाना या होना। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपके मन में यह भ्रांति न हो कि परमेश्वर पृथ्वी पर राज कर रहा है। यदि वह राज करता तो हमें दुख, निराशा, आंसू और युद्ध देखने को नहीं मिलते। इस राज्य के लिए हमें प्रार्थना करना है। यह राज्य केवल परमेश्वर के शिष्टाचार से ही स्थापित होगा और ईश्वरीय पक्ष में होगा। इस राज्य की स्थापना मनुष्य पृथ्वी पर नहीं कर पाएगा, केवल प्रभु यीशु मसीह ही इसकी स्थापना करेगा। राज्य तेरा है। जी हाँ, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि प्रभु की प्रार्थना सार्वजनिक आराधना के लिए नहीं है। यह रविवारीय आराधना की विधि का भाग नहीं है। मेरे विचार में यह व्यक्तिगत प्रार्थना है। राज्य तेरा है, यह प्रत्येक विश्वासी की प्रार्थना होना चाहिए। दाऊद पृथ्वी पर प्रभु के भावी राज्य की प्रतीक्षा में था। वह एक महिमाशाली दिन होगा। मेरे मित्रों, हम पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसके 14 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे ही दिया है। मित्रों, रोचक बात तो यह है कि आप परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। क्यों? सब कुछ तो उसी का है, परंतु जब आप उसे देते हैं तो वह आपको आशीष देता है। हमारी गरीबी और मानसिक संकीर्णता तथा ओछेपन का कारण है कि हम परमेश्वर को देने में उदार दिल नहीं है। परमेश्वर हमें तब ही आशीष दे पाता है जब हम अपने मन उसके सामने खोल देते हैं। जी हाँ, क्योंकि वह दयालु है और वह चाहता है कि वह मुझे और आपको आशीष दे। हम पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि हमें इसके बोध की कैसी आवश्यकता है। हम आगे देखते हैं, सुलेमान का सिंहासन ग्रहण करना। जी हाँ, अब प्रजा परमेश्वर की स्तुति, आराधना और बलि चढ़ाकर सुलेमान को राजा बनाती है। आइए हम पढ़ें पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसके 22 और 23 पद में, फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका और याजक होने के लिए सादोक का अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और भाग्यवान हुआ और इसराइल उसके अधीन हुआ। मेरे प्रियो, सुलेमान के पीछे राज्य का संगठन हुआ और उसने दाऊद की मृत्यु से पूर्व ही राजसी अधिकार प्रदर्शन आरंभ कर दिया। अब हम आगे देखते हैं दाऊद की मृत्यु। पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय उसके 26 से 28 पद में, पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय 26 से 28 पद लिखा है, इस प्रकार ईशय के पुत्र दाऊद ने सारे इसराइल के ऊपर राज्य किया और उसके इसराइल पर राज्य करने का समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया और वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और विभव मनमाना भोग कर मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का इतिहास है। वह चाहता है कि आप दाऊद के प्रति उसकी भावना को समझें। संभव है कि आप दाऊद को पसंद न करें, परंतु परमेश्वर उसे करता है। मैं प्रसन्न हूं कि परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि दाऊद एक मनुष्य था। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वर्नान मगी भी एक पूर्ण मनुष्य है, और मैंने यही देखा है कि परमेश्वर उसके साथ उसी उदारता और कठोरता से व्यवहार करेगा, जी हाँ, जैसा उसने दाऊद के साथ किया। प्रभु भला है, प्रभु अद्भुत है। हम उसके लिए भवन निर्माण तो नहीं कर सकते, परंतु अपनी देह रूपी मंदिर उसे दे सकते हैं। मुझे पाकर उसे कुछ मिलता नहीं है, परंतु वह मुझे ग्रहण करता है। ओह, उसे समर्पित होना कैसा आनंद का विषय है। मेरे मित्रों, आज आप परमेश्वर के निकटता में आए, आप उसे कुछ भी ना दें, परंतु अपने आप को उसे दे दें, अपने हृदय उसके लिए खोल दें, और निश्चय जानें कि यह मंदिर जिसे उसने अपने हाथों से बनाया है, उस मंदिर में वह वास करके आनंदित होगा, आपके जीवन को वह आशीष देगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज के अध्ययन का समय समाप्त होता है। इसके साथ पहले इतिहास की पुस्तक का अध्ययन भी समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही अद्भुत आशीषों को प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम दूसरे इतिहास की पुस्तक से अध्ययन आरंभ करेंगे, इसलिए कृपया आप उस अध्ययन को न खोएं, अपने मित्रों को बताएं, ताकि वे भी इस अध्ययन का लाभ उठा सकें और अपने आत्मिक जीवन में आशीषों को प्राप्त करने पाएं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम ही तो हो, घर उसका पात्र रखो।